क्योंकि तीन उत्सव हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का तिरुभाव, शिला शिवानंद सेन का तिरुभाव और जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो सबसे पहले शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ समाधि पुस्तक में से। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे निकट के पार्षद हैं उनमें से एक हैं ये कौन, शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये पुरुषोत्तम आचार्य। पहले पुरुषोत्तम आचार्य के नाम से विख्यात थे और ये जानते थे ठीक ठीक श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को। और भगवान चैतन्य इनको क्या कहते थे कि जितने भी भक्ति के रस हैं उनके भंडार हैं ये कौन, स्वरूप दामोदर। और इनके नाम में दामोदर जो शब्द है ये चैतन्य महाप्रभु ने ही जोड़ा है, दामोदर। दामोदर का मतलब है भक्ति रस के भंडार। स्वरूप दामोदर ने ही इस संसार को प्रकट किया है, क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो राधा भाव का जो आस्वादन है कृष्ण से विरह का जो भाव है उसके आंतरिक जो अनुभूतियां हैं वो स्वरूप दामोदर ने ही प्रकट किए हैं इस संसार को। भगवान गौरांग के भाव को समझ करके स्वरूप दामोदर उसी प्रकार से कीर्तन करते थे जिससे भगवान चैतन्य की जो आंतरिक भावनाएं हैं वो पुष्ट हों। भगवान चैतन्य के जो गृह भाव को शांत करने के लिए वे गीत गाते थे, कौन से ग्रंथों से, गीत गोविंद से या कृष्ण कृष्णामृत से या चंडीदास और विद्यापति की जो प्रेम गीत थे उससे गाया करते थे। दिन और रात स्वरूप दामोदर और रामानंद राय श्री चैतन्य के साथ निवास करते थे उनकी लीलाओं को पुष्ट करने के लिए। और ये स्वरूप दामोदर 3.5 जो अंतरंग पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के उनमें से एक हैं, समझ रहे हैं, 3.5 अंतरंग पार्षद चैतन्य महाप्रभु के जिनके साथ चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव की चर्चा राधा भाव की चर्चा कर सकते थे। वो कौन कौन से थे, रामानंद राय और सिखी माहिती और स्वरूप दामोदर, 3 हो गए। और आधा कौन है, सिखी माहिती की बहन माधवी देवी, स्त्री होने के कारण चैतन्य महाप्रभु के साथ पूर्ण उनका जो है संग नहीं होता था इसलिए आधा उनको कहा गया है। तो 3.5 जो है चैतन्य महाप्रभु के ये जो है संगी हैं। जैसे ललिता और विशाखा राधा रानी की सबसे निकट की गोपियां हैं उसी प्रकार स्वरूप दामोदर ये विशाखा सखी हैं और रामानंद राय ललिता सखी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के सबसे ज्यादा अंतरंग सखा हैं। स्वरूप दामोदर गौड़ी भक्तों के संरक्षक हैं इसलिए कभी भी कोई भक्त अगर भगवान गौर सुंदर के साथ दुर्व्यवहार करे या किसी भी प्रकार का भी अगर गलती करता था तो भगवान चैतन्य कहते थे स्वरूप तुम्हारे गौड़िया ने ऐसा ऐसा किया है, तो स्वरूप दामोदर से शिकायत करते थे तुम्हारा गौड़िया ऐसा करता है। और स्वरूप दामोदर स्वयं जो है सुधारा करते थे, कोई भी व्याकरण की अशुद्धियां हो या सिद्धांत की त्रुटियां हो, कोई नया अगर गीत लिखा गया है या कोई पुस्तक लिखी गई है तो भगवान चैतन्य को अगर प्रस्तुत की जाए कोई पुस्तक या कोई गीत या कोई रचना तो स्वरूप दामोदर पहले उसको चेक करते थे कि इसमें कोई रसाभास तो नहीं है, कोई सिद्धांतिक त्रुटियां तो नहीं है। समझिए कि स्वरूप दामोदर कितने विश्वसनीय थे चैतन्य महाप्रभु के भी विश्वसनीय पार्षद थे। कृष्णदास कविराज ने ही चैतन्य चरितामृत का जो संकलन किया है, कैसे किया है, स्वरूप दामोदर की डायरी जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जो है, तो स्वरूप दामोदर ने जो डायरी लिखी है कड़चा उसको बोलते हैं, कड़चा। स्वरूप दामोदर के कड़चा थे, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है संगीत की, और उसका नाम है संगीत दामोदर। इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। अब चैतन्य चरितामृत से भी हम स्वरूप दामोदर का चरित्र कुछ पढ़ेंगे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के कितने निकट हैं। स्वरूप दामोदर मिले चैतन्य महाप्रभु से कहाँ, जगन्नाथपुरी में। तो ये घटना मैं वर्णन कर रहा हूँ। एक दिन स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए जगन्नाथपुरी में, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे और दिव्य रसों के सागर थे। आराध्यने अहिला स्वरूप दामोदर प्रभुर अत्यंत मर्मी रसिर सागर। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ब्रह्मचारी, पहले ये ब्रह्मचारी थे तो इनका नाम स्वरूप था, और फिर इन्होंने संन्यास लिया। इन जब संन्यास लिया तो भी ब्रह्मचारी का जो नाम है उन्होंने वो बनाए रखा अपना। फिर दामोदर स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में नवद्वीप में निवास कर रहे थे। मतलब नवद्वीप की लीला में भी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे ये। उस समय इनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। पुरुषोत्तम आचार्य तार नाम पूर्वाश्रम में नवद्वीपे छिलाते हैं प्रभुरे चरणे। जब इन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धारण कर लिया है तो नवद्वीप की लीला में चैतन्य महाप्रभु साथ थे, और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया है तो नवद्वीप में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने भी तुरंत क्या किया, उन्मत्त हो गए और तुरंत संन्यास ग्रहण करने के लिए बनारस गए कि मैं भी संन्यास लूंगा। क्यों, चैतन्य महाप्रभु का संग करने के लिए। तो पहले ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास लिया। प्रभु रे संन्यास देखी उन्मत्त हैया संन्यास ग्रहण कैला वाराणसी गया। और संन्यास इन्होंने लिया चैतन्य आनंद भारती से, बनारस में चैतन्य आनंद भारती से संन्यास लिया। और उन्होंने इनको आदेश दिया कि वेदांत सूत्र पढ़ो और अन्यों को इसकी शिक्षा दो। चैतन्य आनंद गुरु तार आज्ञा दिल ने तारे वेदांत पढ़िया पढ़ाओ समस्त लोके रे। स्वरूप गोस्वामी परम विरक्त और महान पंडित थे। इन्होंने आत्मा और मन से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। परम विरक्त थे परम पंडित काय मने आश्रिया छे श्री कृष्ण चरित। ये बिना किसी उपद्रव के श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए उत्सुक रहते थे, इसीलिए प्राय उन्माद अवस्था में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। निश्चिंते कृष्ण भज्य एते कारणे उन्मादे कार्य लेते हैं संन्यास ग्रहणे। संन्यास ग्रहण करने के बाद पुरुषोत्तम आचार्य ने नियम के अनुसार अपनी शिखा और जनेऊ तो त्याग दिए। मायावादी सन्यासी जो है शिखा धारण नहीं करते हैं, है ना। तो शिखा और जनेऊ तो त्याग दिया किंतु उन्होंने गेरु अवसर नहीं स्वीकार किया। मायावादी सन्यासी गेरु वस्त्र धारण करते हैं और शिखा और जनेऊ धारण नहीं करते हैं। तो उन्होंने शिखा जनेऊ तो त्याग दिया, इन गेरु अवस्त्र स्वीकार नहीं किया। इन्होंने सन्यासी की पदवी भी स्वीकार नहीं की, अभी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। इसे स्वरूप जो नाम है वो भी छोड़ा नहीं। संन्यास करीला शिखा सूत्र त्याग रूप योग पटना नील नाम हैल स्वरूप। स्वरूप दामोदर पांडित्य की अवधि थे, बहुत बहुत बड़े पंडित थे, किंतु वे किसी से एक शब्द भी बोलते नहीं थे। ये निर्जन स्थान में रहते थे और कोई ये नहीं जान सकता था कि ये कहाँ थे। पांडित्य रे अवधि वाक नहीं करो सने निर्जने रही लोग सब नहीं जने। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के वेत्ता थे। ये साक्षात महाप्रभु के दूसरे विस्तार थे। समझोगे कितने महान है स्वरूप दामोदर। कृष्ण रस तत्व वेता देह प्रेम रूप साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। यदि कोई पुस्तक लिखता है, श्लोक लिखता है या गीत बनाता है हा? और उसको चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता है तो सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर उसकी परीक्षा करते थे और फिर महाप्रभु के सामने रखते थे, तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए तैयार होते थे। जब तक स्वरूप दामोदर ने नहीं सुना तब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनेंगे। ग्रंथ श्लोक गीत के है प्रभु पास आने स्वरूप परीक्षा कैल पाछे प्रभु सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध पुस्तकें या श्लोक नहीं सुनना चाहते थे, रस आभास भी सुनना नहीं चाहते थे। रस में आभास चैतन्य महाप्रभु नहीं सुनना चाहते, शुद्ध रस चाहते हैं। स्वरूप दामोदर परीक्षा करेंगे कि भक्ति का सिद्धांत में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है या रस में कोई आभास तो नहीं है, शुद्ध रस होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनिते न है प्रभुर चित्तेर उल्लास। स्वरूप दामोदर सारे साहित्य का परीक्षण ये जानने के लिए करते हैं कि उनके निष्कर्ष सही तो हैं, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जाने की अनुमति देते थे। अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण शुद्ध है यदि प्रभु रे कराना श्रवण। श्री स्वरूप दामोदर विद्यापति और चंडीदास के गीत और जयदेव गोस्वामी के गोविंद गीत के श्लोक पढ़ा करते थे। वे इन गीतों को गाकर से चैतन्य महाप्रभु को आनंदित किया करते थे। विद्यापति चंडीदास श्री गीत है गोविंद इतने गीते कराना प्रभु आनंद। स्वरूप दामोदर गंधर्वों के समान दक्ष गायक थे। स्वरूप दामोदर की आवाज बड़ी मधुर थी, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत मधुर स्वर में गाते थे। और शास्त्र चर्चा में देवताओं के पुरोहित कौन है? बृहस्पति के समान थे। अतएव ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था। संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति दामोदर सम आर नही महामती। श्री स्वरूप दामोदर अद्वैत आचार्य और नित्यानंद के परम लाडले थे और वे श्रीवास ठाकुर आदि भक्ति जनों के प्राणों के समान थे। अद्वैत नित्यानंदेर परम प्रियतम श्रीवास आदि भक्त गणेर है प्राण सम। तो जब स्वरूप दामोदर जगन्नाथपुरी में आए और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिरे और नमस्कार करने के बाद एक श्लोक सुनाया स्वरूप दामोदर ने। सही दामोदर आसी दंडवत हैला चरण पड़ या श्लोक पड़े ते लागीला। अब ये स्वरूप दामोदर का जो श्लोक है आप सोचिए कितना सुंदर होगा श्लोक जिनको चैतन्य महाप्रभु पसंद करते थे। पहले मैं अर्थ बताता हूँ इसके बाद श्लोक सुनाऊंगा। हे कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु आपकी शुभ कृपा जागृत हो जो सभी प्रकार के भौतिक खेदों को भगाने वाली है। आपकी कृपा से हर वस्तु शुद्ध और आनंदमय बन जाती है, ये दिव्य आनंद को जगाती है और स्थूल भौतिक उल्लासों को ढक देती है। आपकी शुभ कृपा से विभिन्न शास्त्रों के मत मतांतर विनष्ट हो जाते हैं। आपकी कृपा हर्ष से युक्त भक्ति को उद्दीप्त करती है। आप भगवान के माधुर्य भाव को महिमान्वित करते हैं। आपकी अहद की कृपा मेरे हृदय में दिव्य आनंद को जागृत करे। अब इस श्लोक में दया शब्द देखेंगे कि कितने बार आता है, बहुत दया आता है, एक अलंकार है। हेलो धूत तिखे दया विषदया प्रोन्मील दामोदया साम्यच्छास्त्र विवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया सत्सम भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निधि तव दया भूयान अमंदोदया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को अपने पैरों पर से उठाकर उनका आलिंगन किया। जैसे हम लोग प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं ना, तो स्वरूप दामोदर ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर करके ये प्रणाम मंत्र पढ़ा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठा करके अपने आलिंगन किया और दोनों ही प्रेमावेश में अचेत हो गए। दोनों अचेत हो गए चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर दोनों मूर्छित हो गए एक दूसरे से गले मिलकर के। उठाया महाप्रभु कैला आलिंगन द्विजने प्रेमा वेशे हैला अचेतन। फिर दोनों को फिर से धैर्य प्राप्त हुआ तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कत क्षण द्विजने स्थिर जबे हैला तबे महाप्रभु तारे कहीं ताला गीला। अब महाप्रभु क्या कहते हैं स्वरूप दामोदर से, मैंने सपने में देखा कि तुम आ रहे हो, अतएव ये अत्यंत शुभ है। मैं तो अंधे व्यक्ति के तुल्य था किंतु तुम्हारे आने से फिर मुझे दृष्टि मिल गई है। सोचो कितने महत्वपूर्ण है ये। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे बिना मैं अंधा था। तुम्हें ये आशीर्वे आज स्वप्ने ते देखिल भाल हैला अंध जैन दुई नेत्र पायिल। स्वरूप ने कहा हे प्रभु मेरा आप अपराध क्षमा करो, मैंने अन्यत्र जाने के लिए आपका संग छोड़ दिया था। नवद्वीप में दोनों संग थे लेकिन मैंने अपराध किया, आपका संग छोड़ा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। स्वरूप कहे प्रभु मोर क्षम अपराध तो माछाणी अन्यत्र गेनु करेनु प्रमाण। हे प्रभु आपके चरणों के प्रति मेरा रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। देखो जो प्रेमी है वो ऐसा कहते हैं कि मेरा जरा भी प्रेम नहीं है, यदि ऐसा होता तो मैं दूसरे स्थान में क्यों चला जाता, अतः मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। तुम्हारे चरण मोर नाही प्रेम लेश तुम छाणी पापी मोई गेनु अन्य देश। मैंने तो आपका साथ छोड़ दिया किंतु आपने नहीं छोड़ा, आपने अपनी कृपा रूपी रस्सी से मेरे गले को बांध कर पुनः मुझे अपने चरण कमलों पर वापस बुला लिया है। कितनी सुंदर बात कही है, कृपा की डोरी से मेरे गले को बांध करके खींचा है आपने मुझे। मैं तो दुष्ट हूँ, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं तो आपसे दूर जाता हूँ भागता हूँ। मोही तोमा छाणिल तुमी मोरे ना छाणीला कृपा पास गले बांधी चरण आनीला। तब स्वरूप दामोदर ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की वंदना की और नित्यानंद ने प्रेम बस उनका आलिंगन कर लिया। तबे स्वरूप कैला ने ताइर चरण बंधन नित्यानंद प्रभु कैला प्रेम आलिंगन। नित्यानंद प्रभु की वंदना करने के बाद स्वरूप दामोदर किससे मिले, जगदानंद से, मुकुंद से, शंकर से और सार्वभौम से। जगदानंद मुकुंद शंकर सार्वभौम सभा संगे यथा योग्य कारिला मिलन। स्वरूप दामोदर ने परमानंद पुरी के चरण कमलों की वंदना की, उन्होंने उलट कर प्रेम बस उनका आलिंगन किया। परमानंद पुरी कैला चरण बंदन पुरी गोसाई तारे कैला प्रेम आलिंगन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एकांत वास स्थान दे दिया, अलग से कमरा दिया स्वरूप दामोदर को रहने के लिए। कहां पर, कहां पर, जगन्नाथपुरी में। और एक सेवक से कहा कि वो उन्हें पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं दे। महाप्रभु दिल तारे निवृते मासा घर जलादि परिचर्या लागे दिल एक किंकर। अब स्वरूप दामोदर की एक और घटना चैतन्य चरितामृत की अंत लीला में है। बंगाल में रहने वाले एक ब्राह्मण ने, सुनिए ध्यान से, बंगाल में रहने वाले एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव के विषय में एक नाटक लिखा, उसकी पांडुलिपि लेकर महाप्रभु को सुनाने के लिए आया। तो ये ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त भगवान आचार्य से परिचित था, अतः जगन्नाथपुरी में उनसे मिलने के बाद वह ब्राह्मण भगवान आचार्य के घर में रहने लगा। पहले तो उस ब्राह्मण ने भगवान आचार्य को वो नाटक सुनाया और अनेक भक्तों ने भगवान आचार्य के साथ उस नाटक को सुना। सारे वैष्णवों ने ये कहकर नाटक की प्रशंसा की कि बहुत ही अच्छा है। उन्होंने ये भी इच्छा व्यक्त की कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी ये नाटक सुने। ये प्रथा थी कि जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कोई गीत, श्लोक, ग्रंथ या कविता लिखता तो सुनाने के लिए उसे सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास लाना पड़ता। यदि स्वरूप गोस्वामी हाथ कर देते तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनने के लिए प्रस्तुत किया जाता। अच्छा, अब वो जो ब्राह्मण था वो स्वरूप गोस्वामी से परिचित नहीं था, तो बाकी सब भक्तों को सुनाया उसने। यदि इसका संकेत होता कि दिव्य रसों की व्याप्ति इस तरह हुई है जो भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसे सहन नहीं कर पाते थे, अत्यंत क्रुद्ध होते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के क्रोध से बचाने के लिए स्वरूप दामोदर पहले से ही सुनते थे और उसको अलग कर देते थे, ये नहीं सुनाना चैतन्य महाप्रभु। इसलिए जब तक स्वरूप दामोदर कोई बात पहले सुन न लें, तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु से नहीं सुनते। महाप्रभु ने इस शिष्टाचार या मर्यादा का नियम बना दिया है। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से निवेदन किया। अब भगवान आचार्य कहते हैं किससे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी से। एक उत्तम ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक नाटक तैयार किया है और अति उत्तम रीति से रचा हुआ प्रतीत होता है। स्वरूपे रखाई आचार्य कैला निवेदन एक प्रभुर नाटक करी अच्छे उत्तम। पहले आप सुन लें और यदि आपका मन से स्वीकार करे तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से इसे सुनने के लिए प्रार्थना करूं। आदो तुम्हें सुन जाति तोमार मन माने पाछे महाप्रभु रे तबे कराई मु श्रवणे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे भगवान आचार्य, तुम अत्यंत उदार ग्वाले हो, कभी कभी तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की कविता को सुनने की इच्छा जागृत होती है। ग्वाले मतलब अनुभवी नहीं होता, जो ग्वाला का मतलब जो अनुभवी नहीं है, तो जो चाहो वो तुम सुन लेते हो, तुम्हें मजा आता है। जो शिक्षित नहीं है, ग्वाला है, उसको तो मजा आता है, जो चाहो तो तुम सुन लेते हो और तुम्हें अच्छा लगता है। तथाकथित कवियों की रचनाओं में रसाभास की संभावना रहती है। इस तरह जब रस सिद्धांतों के विरुद्ध होते हैं तो ऐसी कविता को सुनना कोई भी पसंद नहीं करता, यानी कोई विद्वान पसंद नहीं करता। जो कभी व्याकरण के नियमों को नहीं जानता, जो अलंकारों से विशेष या नाटक में प्रयुक्त अलंकारों को नहीं जानता, जो यह नहीं जानता कि श्री कृष्ण की लीलाओं को किस तरह प्रस्तुत किया जाए, उसे धिक्कार है। इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं समझने में विशेष रूप से कठिन है। अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है उसने, लेकिन लिखना कठिन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जिसने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपना प्राण धन मान लिया है, वही भगवान कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकता है। कौन कह रहा है? स्वरूप दामोदर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान आचार्य से कह रहे हैं। कृष्ण लीला गौर लीला से करे वर्णन, गौर पाद पद्म चार है प्राण धन। जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान नहीं है और जो पुरुष और स्त्री के पारस्परिक संबंधों के विषय में लिखता है, उसकी कविता सुनकर केवल दुख होता है, जबकि प्रेम लीन भक्त के शब्दों को सुनकर परम सुख उत्पन्न होता है। तो भगवान आचार्य ने अनुरोध किया कि कृपया एक बार उसका नाटक सुन लो, यदि आप सुनेंगे तो विचार करेंगे कि अच्छा है या बुरा है। भगवान आचार्य ने लगातार 2-3 दिनों तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी से आग्रह किया काव्य सुनने के लिए। उनके 12 बार अनुरोधों से स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बंगाल के ब्राह्मण द्वारा रचित काव्य को सुनने की इच्छा व्यक्त की। स्वरूप दामोदर गोस्वामी काव्य सुनने के लिए अन्य भक्तों के साथ बैठ गए, तब कवि ने श्लोक पढ़ना शुरू किया। परिचय नाटक में जो ना परिचय एक श्लोक होता है परिचय का। अब वो परिचय श्लोक कैसा है? चैतन्य महाप्रभु का परिचय दे रहे हैं ना, तो क्या उसने श्लोक पढ़ा? इसका अर्थ मैं पढ़ रहा हूँ। भगवान ने सुनहरा वर्ण धारण कर लिया है और जगन्नाथ नामक शरीर की आत्मा बन गए हैं। समझे? चैतन्य महाप्रभु का परिचय दिया कैसे? कि भगवान ने सुनहरा रंग धारण किया है और जगन्नाथ नामक शरीर की आत्मा बन गए हैं। अच्छा है, सब भक्तों को अच्छा लगा। जिनके विकसित कमल नेत्र अति विस्तृत हैं, इस तरह वे जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए हैं और जड़ को चेतन बना दिया है। श्री कृष्ण चैतन्य देव हम सबों को सौभाग्य प्रदान करें। विकच कमल नेत्र श्री जगन्नाथ संगे कनक रुचि मन्यात्मताम यह प्रपन्न प्रकृति जलमतेसम चेतयन्ना विरासीन सदसतु तव भव्यम कृष्ण चैतन्य देवाम। तो जितने उपस्थित लोग थे श्लोक सुना तो सबने कवि की प्रशंसा की, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसे अनुरोध किया कि इस श्लोक की व्याख्या करो। उस कवि ने कहा, जगन्नाथ जी अत्यंत सुंदर शरीर हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि अत्यंत धीर हैं उस शरीर के स्वामी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ नीलाचल में संपूर्ण जड़ जगत को आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रकट हुए हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित सारे लोग परम सुखी हुए, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि अकेले ही अत्यंत दुखी हुए और बहुत क्रोध में बोले। देखा, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत गुस्सा हुए और बोले, सुनिए सब और हैला आनंदित मन दुख है पाइया स्वरूप का है सक्रोध है वचन। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुमने अपना सर्वनाश अपने आप बुलाया है, क्योंकि तुम्हें ना तो दो भगवानों जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान है और ना ही उनमें तुम्हारी श्रद्धा है। देखा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत गुस्से से बोले, अरे मूर्ख आप नार कैला सर्वनाश द्विता ईश्वर तोर नाहि कै विश्वास। भगवान जगन्नाथ नितांत आध्यात्मिक है, दिव्य आनंदमय है, किंतु तुमने उनकी तुलना जड़ शरीर से की है जो भगवान की निष्क्रिय बहिरंगा शक्ति से बना है। तुमने क्या मान लिया, जगन्नाथ को जड़ शरीर मान लिया है और चैतन्य महाप्रभु को आत्मा मान लिया है, ये बहुत अपराध किया तुमने। पूर्णानंद चित स्वरूप जगन्नाथ राय तोरे कैले जड़ नश्वर प्राकृत खाए। तुमने श्री चैतन्य महाप्रभु को सामान्य जीव के स्तर का कहा है कि जीव आत्मा है, जगन्नाथ की जीवात्मा है जो कि छह ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है, उन्हें परम अग्नि के रूप में न जानकर तुमने उन्हें एक स्फुलिंग के रूप में स्वीकार किया है। पूर्ण षडैश्वर्य चैतन्य स्वयं भगवान सारे कैले क्षुद्र जीव स्फुलिंग समान। स्वरूप दामोदर ने कहा, क्योंकि तुमने दोनों भगवान का अपराध किया है, कौन जगन्नाथ जी का भी और चैतन्य महाप्रभु का भी, अतः तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम ये भी नहीं जानते कि पर ब्रह्म का वर्णन किस तरह किया जाता है, तो भी तुमने वर्णन करने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। तुम पूर्ण ब्रह्म हो क्योंकि तुमने भगवान के शरीर और आत्मा में भेद किया है, ये एक महान अपराध है। जगन्नाथ जी को शरीर और चैतन्य महाप्रभु आत्मा माना है। भगवान के शरीर और आत्मा में कभी भी कोई अंतर नहीं होता, उनके स्वरूप और शरीर आनंद में आध्यात्मिक शक्ति से बने हैं, चिदानंद है, उनके कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर एरे नाही कबू देह देही भेद स्वरूप देह चिदानंद नाही कै विभेद। कहां दिव्य आनंद से पूर्ण छह ऐश्वर्यों से युक्त और भौतिक शक्ति के स्वामी परम ब्रह्म भगवान कृष्ण, कहां क्षुद्र जीव जो सदैव दुखी रहता है पर भौतिक शक्ति का दास है। परम नियंता भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूरित रहते हैं। ये व्याख्या सुनकर सभा के सारे सदस्य आश्चर्यचकित थे, उन्होंने स्वीकार किया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने असली सत्य कहा है। तब उनको पता चला सब भक्तों को कि वो गलत है। सब भक्त प्रसन्न हो रहे थे, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। बंगाल के ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी और श्री चैतन्य महाप्रभु का गलत वर्णन करके अपराध किया है। जब बंगाली कवि ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी की ये निंदा सुनी तो वह लज्जित और भयभीत और चकित हुआ। लज्जित भी हुआ, भयभीत भी हुआ और चकित भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। निस्संदेह हंसों के बीच में बगुला की तरह होने से वो कुछ कह नहीं सका। सोनिया का वीर हैला लज्जा भय विस्मय हंस मध्य बक्त जैसे कि छू ना ही कैम। फिर स्वरूप कवि के दुख को देखकर अत्यंत दयालु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसे उपदेश दिया जिससे उसे कुछ लाभ मिल सके। तारे दुख देखे स्वरूप सदा हृदय उपदेश कैला तारे जैसे हित है। अब उन्होंने क्या उसको शिक्षा दी, उन्होंने कहा यदि तुम श्रीमद् भागवत समझना चाहते हो तो तुम्हें किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाकर उससे सुनना चाहिए। तुम ऐसा तब कर सकते हो तुम ऐसा सब कर सकते हो जब तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण कमलों में पूरी तरह से शरण ले लो। जाह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणी। अब शिवानंद सेन के बारे में मैं पहले तो पढ़ के सुनाऊंगा समाधि पुस्तक से, इसके बाद चैतन्य चरितामृत से भी उनका चरित्र है। प्रत्येक वर्ष चतुर्मास के पहले, चतुर्मास जो वर्षा ऋतु के होते हैं, शिवानंद सेन 200 भक्तों का दल ले जाते थे बंगाल से, कहा जगन्नाथपुरी, और रथ यात्रा उत्सव भी उसमें होता था। वर्षा के 4 महीनों में रथ यात्रा उत्सव भी होता था, और उनका पूरा भोजन का खर्चा, उनकी यात्रा का खर्चा, और उनका जितना भी खर्चे रास्ते के हैं सब वो खुद वहन करते थे, और स्वयं जो है उनकी विश्राम की भी जो व्यवस्था करते थे। शिवानंद सेन ने वैष्णव की जो दया है वो प्रकट की सब जीवों के प्रति, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो। जब एक सड़क का कुत्ता उनके दल में शामिल हो गया तो उस कुत्ते को भी प्रसाद देते थे, खिलाते थे, और यहां तक कि नौका में जब कुत्ता चढ़ता था तो उसका भी किराया देते थे, नौका का जो कुत्ते का भी ना किराया देते थे। रास्ते में कई नदियां पड़ती थी, तो जब कुत्ता एक दिन चला गया, उनके दल में गायब हो गया, तो शिवानंद सेन ने 10 आदमियों को भेजा उस कुत्ते को ढूंढने के लिए, लेकिन कुत्ता नहीं मिला। तो जब पुरी में आए तो चिंतन कर रहे थे उस कुत्ते का, चिंता कर रहे थे, तो पुरी में आए तो देखा कि भगवान चैतन्य उसको नारियल की गिरी फेंक रहे हैं और खिला रहे हैं, उसको नारियल की गिरी फेंक फेंक करके कुत्ते को खिला रहे हैं, और कुत्ता जो है जितने भी भौतिक प्रदूषण से उससे मुक्त हो गया, क्यों, भगवान चैतन्य के उच्छिष्ट महाप्रसाद को खा करके। अब अगले दिन कुत्ता जब दिखाई नहीं दिया तो शिवानंद सेन समझ गए कि कुत्ते को मुक्ति प्राप्त हो गई है, कैसे, भगवान चैतन्य की कृपा से। जगन्नाथपुरी में चतुर्मास्य का पालन करके शिवानंद और भक्त लोग नियमित रूप से